ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கிந்து வாகிந்திரிய ஔர் ரசன இந்திரிய ஹே உன்கா கோலக் ஏக ஹை ஜுவா மே முக் மே. इसलिए वाग इंद्रिया भी मुख में है, हमारी रसन इंद्रिया भी मुख में है। इसलिए हम बता रहे मुकाद वाग, उस मुख से वाणी उत्पन्न हो गई है, अर्थात वाग इंद्रिया का गोलक और वाग इंद्रिया दोनों, और वाचो अग्नि, वाणी के द्वारा उस वाणी का अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हो गई। क्योंकि अधिष्ठात्री देवता के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा दिया है, अधिष्ठानम ततः कर्तः करके। चाहे तो आप शास्त्रीय कर्म करते हो अथवा अशास्त्रीय कर्म करते हो, कोई भी कर्म करे, ये पांच चीज आपको अवश्य चाहिए। सबसे पहले शरीर होना चाहिए, अधिष्ठान कहा दिया वहां। शरीर होने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए, मुझे करना है, कर्तृत्व बुद्धि होना चाहिए। शरीर भी है, कर्तृत्व बुद्धि भी है, तभी भी काम नहीं कर सकते आपको। उसके बाद आपको चेष्टा करना पड़ेगा, अलग अलग चेष्टा भी करना पड़ेगा। जैसा किसी को पढ़ने की इच्छा हो गई तो शरीर रहने से इच्छा हो गई, तो शरीर भी है उसके अंदर इच्छा भी हो गई, मुझे पढ़ना है, कर्तृत्व भाव आ गया। उसके बाद उसको चेष्टा करना पड़ेगा, किताब लाना पड़ेगा, गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, इस चेष्टा करना पड़ेगा। ठीक है, शरीर भी स्वस्थ है, पढ़ने की इच्छा भी हो गई, कर्तरी भाव भी है, किताब लेके गुरुजी के पास गए भी, तो तीन तो है किंतु आंक नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकता। इसलिए इंद्रिया भी चाहिए, ये चार हो गया, शरीर, पढ़ने की इच्छा, कर्तृभाव, चेष्टा मतलब वहां से गुरुजी के पास गए पुस्तक आदि लेकर, और आंक। इतने भी काम नहीं है, रात्रि में बिजली गई, लाइट नहीं, क्या पढ़ेंगे। इसलिए चक्षु का अभिमानी देवता है सूर्य है अथवा तेज, वो भी चाहिए, तभी जाके आप कर्म कर सकते, कोई भी कर्म। शरीर भी चाहिए, कर्तृपन भी चाहिए, चेष्टा भी होनी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए, और उसका देवता होना चाहिए, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जो ज्ञानी जो कर्म करता है उनसे भी कर्म होता है, ऐसे नहीं, किंतु उसको कर्म नहीं माना जाता है। क्यों? ये पांचों में उनमें एक अंश नहीं है, शरीर तो है उनका भी, किंतु कर्तृपन नहीं उसके अंदर, चेष्टा वो भी कर रहे हैं और आंख उनकी भी है, देवता भी वहां है। चार होने पर भी ज्ञानी के अंदर कर्तृत्वपन नहीं, अतः वो कर्म होने पर भी वो कर्म नहीं माना है, इतना ही अंतर है। अज्ञानी में पांचों है और ज्ञानी में वहां एक नहीं है, इसलिए पांचों के बिना जो हो रहे हो, इसलिए कर्म होने पर भी कर्म नहीं माना। तो इसलिए यहां बता रहे वाणी का अधिष्ठात्री देवता है अग्नि है। ये कैसा है महाराज, वाणी का अधिष्ठात्री अग्नि कैसा है? ये तो अनुभव है आप लोगों का। बाजार में झगड़ा क्यों होता है? वाणी से ही होता है। शब्द प्रयोग किया उसको अग्नि लग गई। थोड़ा सा ऐसा शब्द प्रयोग किया सामने वालों को क्या हुआ? अग्नि लग गई। क्योंकि वाणी का जो अधिष्ठात्री देवता है तभी उनको चोट पहुंच गया। तो इसलिए हम बता रहे हैं वाचो अग्नि, अर्थात वाणी के द्वारा अग्नि उत्पन्न हो। हमारे वाणी से नहीं, हमारा मूल पुरुष विराट उसकी उत्पत्ति चल रही है। उसके बाद नाशिका निरविद्यता, मैंने पहले कहा दिया था जैसा हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है वैसे ही उनका भी है। हमारा वृष्टि है, उनका समष्टि है। तो इसलिए जो नाशिके निरविद्यता, नाशिक एक है किंतु गोलक दो होने से यहां द्विवचन कहा रहे। जो नाशिका है अर्थात रंध्र छिद्र वो प्रकट हुआ। नाशिकाभ्याम प्राणहा, और जो नाशिका है उसमें प्राण प्रकट हो गया। प्राण किसको कहते हैं? हम बोलते प्राण है बोल के। शरीरांतः संचारी वायु प्राणहा, एक तो बाहर वायु भी संचरण कर रहे किंतु हमारे शरीर के अंदर जो संचरण करने वाला वायु है उसका नाम है प्राण। शरीर के अंदर मन भी संचरण कर रहे हैं, केवल संचारी प्राण नहीं कह सकते आप, अर्थात संचरण करने वाला वायु है ये प्राण नहीं कह सकता है। तो बाह्य वायु भी संचरण कर रहे हैं, इसलिए कहना पड़ेगा शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर है जो वायु वो प्राण है, क्योंकि मन भी है किंतु वो वायु नहीं है। शरीर के अंदर हम दो संचरण कर रहे हैं, मन भी संचरण करता है। जैसे चोट लग रही है पैर में, आपका मन पैर में गया, सिर में लगे तो सिर में गया, हाथ में लगे तो हाथ में भी गया, मन संचरण कर रहे पूरा और प्राण भी संचरण कर रहे। इसलिए कहा शरीर के अंदर जो संचरण करने वाला जो वायु विशेष है उसका नाम प्राण है। इसलिए हम बता रहे नाशिकाभ्याम प्राण, ये जीवन उपयोगी है। जब तक प्राण रहेगा तब तक ही जीवन है। इसका मतलब प्राण का मतलब जीवन एक प्रकार का। प्राणाद वायु, और प्राण से जो वायु है उसका देवता उत्पन्न हुआ। उसके बाद उस परमात्मा ने पुनः विचार किया, यहां तक मैं पहुंच गया किंतु अभी तक ये विराट पिंड है अधूरा है, इसको पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए अक्षिणी निरविद्यता, उन्होंने विचार किया, जो सिर के जो थोड़ा कपाल के नीचे दृष्टि करते हुए विचार किया, करते करते दो आंख प्रकट हो गए। जैसा शिल्पकार को तो प्रयत्न करना पड़ता है, और इनको कोई अलग प्रयत्न, केवल चिंतन करना। ऐसा क्यों चिंतन कर रहे परमात्मा? जन्मांतर की जो सृष्टि है उस जन्मांतर की सृष्टि का संस्कार उसके अंदर पड़ा है, उस संस्कार के अनुसार वो विचार कर रहे एक एक। अन्यथा जन्मांतर सृष्टि का यदि संस्कार ना होता तो जैसा अभी हमारे आंख सामने है, पूर्व जन्म में कोई मनुष्य की आंख पीछे भी हो सकती थी, ऐसी नहीं है। स्पष्ट बता रहे श्रुति, जैसा पूर्व कल्प में जैसा था वैसे ही सृष्टि कर रहे हो, कोई बदल नहीं कर रहे। तो इसलिए उन्होंने विचार किया, तो विचार करते करते उसकी दृष्टि वहां गई कपाल के नीचे भाग, दो छिद्र हो गए, आंख प्रकट हो गई। यही बता रहे अक्षिणी निरभिद्येता अक्षिभ्याम चक्षु। अक्षी मतलब गोलक, उस गोलक से चक्षु मतलब इंद्रिय प्रकट हो गए, देखने के सामर्थ्य वहां। चक्षु के द्वारा उसका अभिमानी देवता आदित्य उत्पन्न हो गया। उसके बाद परमात्मा ने विचार करते करते जो शिर था, सिर का दाह्य और बाह्य तरफ से उनकी दृष्टि गई, आंख भी बना दिया मैंने और नाशिका भी बना दिया, मुख भी बना दिया। अब ये मनुष्य आगे जो इनका जो परंपरा है कि चश्मा कहां से रखेंगे, तो इसलिए उन्होंने कान के दो गोलक बना दिए। तो इसलिए बोल रहे कर्णो निरभिद्येता कर्णाभ्याम श्रोत्र। कर्ण मतलब गोलक, और उन गोलकों के अंदर श्रवण इंद्रिय को बना दिया जिससे हम शब्द ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये कर्ण नहीं है, अंदर का गोलक को ये इसलिए दिया जो आपसे जो शब्द आ रहे हैं उसको रुकवाने के लिए, स्पष्ट मान। इसलिए आप धीरे से कोई बोलते हैं तभी हाथ ऐसा करते हैं, अतः वो शब्द आगे ना जाए, घूम करके मेरा कान में आ जावे, तो इसलिए ये बना दिया बाहर का। इसको कान नहीं बोलते, कान है अपना कर्ण विवरवर्ती आकाश, ये श्रोत्र है, अंदर का छिद्र है वो गोलक है। कान के अंदर जो छिद्र है वो गोलक है, उसमें रहने वाला जो आकाश है वो श्रोत्र इंद्रिय है, उसको श्रोतेन्द्रिया माना जाता। इसलिए बोल रहे श्रोतेन्द्रिया उत्पन्न हो गया, उससे दिशा उत्पन्न हो गई। उसके बाद त्वंग निरभिद्येता, ये हमारी त्वचा है वो उत्पन्न हो गई, और त्वचा के द्वारा लोमाने, ये सारे रोवे है उत्पन्न हुआ, और रोवे के द्वारा औषधि और वनस्पति, ये सारे जो औषधि और वनस्पति है उस विराट के रोवे से उत्पन्न हुए। इसलिए वहां कह दिया सप्तांग एकोन विंशति मुख, सारा जो ब्रह्मांड है उसको सात भाग में विभक्त किया है। विराट का शरीर है, जो लोग उसका शरीर है, पृथ्वी उसके पैर है, और नेत्र है, सूर्य चंद्र उसके नेत्र है, वायु उसका प्राण है, ये वर्णन किया। सप्तांग है, सात अंगों से, उसको वैश्वानर कहा दिया है, अहम वैश्वानरो भूत्व वहां कहा दिया। इसलिए उस परमात्मा के अर्थात विराट के रोवे के द्वारा औषधि और वनस्पति, औषधि और वनस्पति में थोड़ा अंतर है। औषधि उसको कहते हैं एक बार फल दे के जो नष्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं औषधि। जैसा धान है, गेहूं है, ये सब औषधि, और वनस्पति कहते हैं बार बार जो फल देते हैं, आम का पेड़ है, कटहल का है, अथवा अन्य जो भी है वनस्पति माना है, धान गेहूं आदि औषधि। इसलिए वहां कह दिया क्षुद व्याधिश्चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्ष औषधम भुज्यता, भिक्ष को औषध कहा दिया है। तो उस विराट के शरीर में जो रोवे थे उससे धानादि रूप औषधि, और फल देने वाले वृक्ष है वो वनस्पति आदि उत्पन्न हो गए। उसके बाद बता रहे हृदयम निरभिद्येता, हृदय उत्पन्न हुआ। यह हृदय का मतलब है अंतकरण का आश्रय लेना, गोलक लेना, वो उत्पन्न होगा। और हृदयाद मनोहो, हृदय से मन का मतलब यहां अंतकरण लेना, मन का मतलब अंतकरण की वृत्ति नहीं लेना यहां। तो हृदया मतलब जो गोलक उत्पन्न हुआ, उस गोलक के अंदर अंतकरण उत्पन्न हुआ, मन का मतलब अंतकरण, क्योंकि एक ही अंतकरण चतुष्टय रूप से विभक्त हो जाता है। अंतकरण एक है हमारा, वृत्ति को लेकर उसको चार माना है। एक उसी अंतकरण को हम लोग मन कहते हैं। क्यों मन कहते हैं? जहां हमारे अंदर संकल्प और विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ये संकल्प और विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। जैसा कोई चोर है, पहले पहले चोरी में जाता है, तभी उसके अंदर दो बुद्धि आती है, चोरी करना या नहीं करना, करना नहीं करना। ये जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं वो भयात्मक, तो संकल्प विकल्प जो हो रहे तभी उसी वृत्ति का नाम हम लोग मन कहते, तभी उसका अभिमानी चंद्रमा माना जाता है मन का। और यदि आप एक तरफ से निश्चय किया चोरी नहीं करना, पहले करना नहीं करना, करना नहीं करना, वो भयात्मक थी, तभी वो मन हुआ। आपने निश्चय किया चोरी नहीं करना, अथवा सत्संग जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, ये उभयात्मक हो रहे, तभी वो वृत्ति बंद है, उसका नाम मन है। और बुद्धि कहती है नहीं जाना ही है, तभी वो बुद्धि हो गया, वो अंतकरण निश्चयात्मक हो गया। तो निश्चयात्मक वृत्ति बन जाती है तभी उसको बुद्धि कहते हैं। और उसका अधिष्ठात्र देवता ब्रह्म माना है। और उसके बाद मनुष्य अहंकार करता है, मैंने किया, मैंने किया, अहम अहम अहम, ये अंतकरण में वृत्ति बनती। ये किसका किताब है? मेरा, मैंने किया, मैंने पढ़ाया, जो अहम बुद्धि उत्पन्न होती, एक अहम वृत्ति बनती है उसी अंतकरण में, उसको कहते अहम, अर्थात अहंकार। तो अहंकार जो वृत्ति बनती है तभी उसका अधिष्ठात्र देवता रुद्र माना जाता है। और वही अंतकरण में एक स्मरणात्मक वृत्ति बनती है, और स्मरण करते हैं परमात्मा का हो अथवा बीता हुआ पदार्थ, तभी उस अंतकरण का नाम चित्त कहा जाता है। तभी उसका अभिमानी देवता वासुदेव कहा जाता है। तो अंतकरण एक है, वृत्ति भेद से वो अलग अलग होता है। तो चार प्रकार की वृत्ति को लेकर, संकल्प विकल्प आत्म को लेकर मन कहा दिया, निश्चयात्म को लेकर उसको बुद्धि कहा दिया, गर्वाकार वृत्ति को लेकर उसको अहंकार कहा, स्मरणाकार वृत्ति को लेकर उसको चित्त कहा दिया। यहां जो मन बता रहे संकल्प विकल्प है अंतकरण, इसलिए बोल रहे मन मतलब अंतकरण। और उससे चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसके बाद नाभिर्निरभिद्यता, नाभि प्रकट हो गई, और नाभि से अपानो, ये अपान वायु के साथ संबंध है नाभि के साथ, क्योंकि नाभि है सारे नाड़ियों का केंद्र माना जाता है। एक तो हृदय है, क्योंकि सारे नाड़ी हृदयों से निकली है, हृदय से निकल करके पुनः नाभि के साथ एकत्रित होते हैं। अतः जो माता के गर्भ में शिशु है वो नाभि के द्वारा ही आहार ग्रहण करता है, मुख से ग्रहण नहीं कर रहे। यदि आहार ग्रहण ना किया होता तो वो बढ़ता कैसा गर्भ में? गर्भ में जो बढ़ रहे उसके लिए भी आहार चाहिए, वो नाभि से ग्रहण करता है। इसलिए नाभि के साथ सबका संबंध है। जैसा आपके ऊंट फट जाते हैं तो इसलिए क्या करते हैं, नाभि में तेल डालते हैं, तो नाभि में तेल डालने से ऊंट फटना बंद होते हैं। इसका मतलब आपका नाभि का संबंध वहां भी है। तो इसलिए हम बता रहे हैं नाभि के द्वारा अपान, अपान का मतलब नाभि के साथ अपान प्राण का संबंध है, और अपानात मृत्यु, और अपान के द्वारा मृत्यु प्रकट हो गई उसका देवता। उसके बाद शिष्य नहा निराविद्यता, जो हमारे मूत्र इंद्रिय है वो प्रकट हो गई, और उसके द्वारा उसे रेत हो और उस वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पत्ति बता दिया। उसके बाद इस सारे देवतों को तो प्रकट किया उन्होंने, जितने भी इंद्रिया भी प्रकट किया, गोलक भी प्रकट किया, देवता भी किया, किंतु उन देवतों को ये संसार सागर में धकेल दिया, जितने भी देवता थे। और देवतों के लिए रहने की व्यवस्था ठिकाना भी अभी तक नहीं बता दिया, और उनके लिए भोजन भी नहीं दिया। भगवान मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आ गए, रहने के लिए तो दे दिया और भोजन आपने तो भूखा रहेगा, वैसे ही उस परमात्मा ने ये सारे जो देवता है इंद्रियों को उनको उत्पन्न तो किया और संसार सागर में ही डाल दिया, और वो भूख प्यासे थे, इसलिए आगे ये देवता अन्न और अपना आश्रय, किस आश्रय में रहकर हम ये अन्न भक्षण कर सकते हैं, उसे प्रार्थना कर रहे परमात्मा से, वो बता रहे आगे के खंड में लेके प्रथम मंत्र, मंत्र देके विचार कल करें, पहले मंत्र देके। ता एता देवताः श्रेष्ठा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् तमशानाया पिपासाभ्याम् मन्ववार्जयेत् त एनम् अब्रुवन् नायतनम् नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नमधामेति। इस प्रकार उस परमात्मा ने सबसे पहले विराट का शरीर बना दिया। विराट का शरीर बनाने के बाद पहले पिंडाकार से बना दिया था, उसके बाद उसमें धीरे धीरे गोलक भी बना दिया इंद्रियों का। गोलक बनाने के बाद इंद्रिया भी बना दिया, और उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को भी बना दिया। अभी जो जितने भी देवता थे इंद्रियों के अभिमानी, इस सारे देवतों ने बैठ करके मीटिंग कर दिया आपस में, क्योंकि इन्होंने उत्पन्न तो किया हम लोगों को, हमारा पिता है, अभी हम कहां बैठेंगे मनुष्य का शरीर में, और हमारा भोजन क्या होगा, इसके लिए विचार किया। ये विचार हम लोग कल करें। ओम शांति शांति शांति।